देख करके देखा, अरे हमारे मन को भाव को ये कौन जान दिया, ये को किसने लिखा? हरिदास ठाकुर जी से पूछा, हरिदास ठाकुर ये यहाँ पर कौन लिख करके रखा? तो वही आपका प्रिय
रुद्रा के रूप में
कहा है, वो स्नान करने गया, अभी आ रहा, वो इतने में रूप गोस्वामी आ गए। बस महाप्रभु प्रेम में भर करके उसके पीठ पर कैसे जान लिया हमारा भाव? यह उसमें तो कोई जानने वाला नहीं था। वो श्लोक को दूसरे रूप में काव्य उसके साहित्य दर्पण का उस श्लोक को बदल करके और अपने भाव में लेकर के प्रियम स्वयं सहचरी इत्यादि सब महाप्रभु देख करके बड़े प्रसन्न होते। बोले तुम कैसे जान लिया हमारे मन के भाव को, और तो कोई नहीं जाना। इतने में स्वरूप दामोदर खड़े थे और रामानंद थे और सब लोग वहां पर बैठे थे। स्वरूप दामोदर जी ने कहा, आपके भाव को बिना आपके जनाने दूसरा कोई नहीं जान सकता। जिसको आप जना देंगे वही जानेगा। ब्रह्मा जी ने भी ऐसी स्तुति की है श्रीमद् भागवत में, अथवा लंबा चौड़ा अख्यान हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कह रहा। कभी प्रसंग आएगा तो उसमें हम लोग दत्त महाराज जी इत्यादि करेंगे। तो उन्होंने ये भाव लिखा, उसका भाव ये था, वही हमारे प्रियतम कृष्ण है आज, और मैं ही उनकी पुरानी वही प्रियतमा हूं। हम लोगों का दोनों का मिलन भी वैसा ही है क्षेत्र में, और आज वही हमारे वर बने हैं, कौमार हर हैं। कौमार हर माने के कौमार को जो हरण करता है, अर्थात विवाह के माध्यम से कौमार से वैवाहिक जीवन में आया जाता है, इसलिए हमारे कौमार को हरण करने वाले वही आज हमारे प्रियतम हम देख रहे हैं उनको। और वही चैत्र महीने की का ये दिन है, बासंती हवा भी बह रही है, कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष और ये सब है, वो भी हवा भी आ रही है, पंच सरोवरों से बड़ी सुशीतल हवा भी आ रही है, किंतु हमारा मन उत्कंठित हो रहा है कहां के लिए? वृंदावन में। यहाँ पर सुंदर कदम्ब के वृक्ष, बेली चमेली इत्यादि है, जमुना में कमल खिले हैं और उसका सुंदर सुशीतल हवा लेकर के सुगंधी वो आ रही है, और जहां पर हमारा तुम्हारा उसी वृंदावन में हमारा चित्त उत्कंठित हो रहा है, हम दोनों मिले। यहाँ हाथी घोड़े हैं, यहाँ पर बड़े बड़े नरेश हैं, सभी लोग देवकी और वसुदेव जी हैं। तुम्हारा वेश तो हमको मार डालता है, आज तुम क्षत्रिय वेश में हो, मोर मुकुट तुम्हारा कहाँ गया? तुम्हारी लठिया और लकुटी कहाँ गई, कमलिया कहाँ गई? आज तुम नंदनंदन और यशोदा नंदन नहीं हो, आज आप रुक्मिणी कांत है, राधा कांत नहीं है, गोपी कांत नहीं है। इसलिए यदि हमको प्रसन्न करना है, हमारी अभिलाषा पूर्ण करना है, तो आप वृंदावन हम अपने मनोरथ पर आपको लेकर के चलेंगे। अन्य हृदय मन और दूसरों का जो मन है वो मन है विषय, उसमें चिंतन होता है। हमारा मन वृंदावन है, यदि हमारे मन में ही हमको ध्यान की शिक्षा आपको देनी है और आपको हमारे मन में आना है तो वृंदावन में पधारिए, क्योंकि हमारा मन और वृंदावन एक है, हमारा हृदय और वृंदावन एक, हमारे हृदय में उदित होइए, हमारे ध्यान में उदित होइए, अर्थात वृंदावन में अपने चरण कमलों को ले चलिए, तब कहीं जाकर इस श्लोक को देख करके चैतन्य महाप्रभु भाव होते और कहा सब लोगों से हाथ जोड़ करके, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, रामानंद, स्वरूप दामोदर जितने उनके परिकर थे, सबसे कहा जैसे ये इस लड़के में आप लोग कृपा शक्ति संचार करें जो हमारे भाव को ये जगत में प्रकाश कर सके। और हुआ है ऐसा, श्री चैतन्य मनोभीष्टम भूतले स्वयं रूप कदा मरियम ददाति, चैतन्य महाप्रभु जी ने चैतन्य महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को श्री रूप गोस्वामी ने वृंदावन से ग्रंथ लिखते हुए, जब वृंदावन से आए रहे थे महाप्रभु के दर्शनों के लिए, तो रास्ते में उन्होंने एक ग्रंथ लिखना आरंभ किया, उसका नाम रखा ललित माधव, शायद उसमें पूर्व की लीला अर्थात वृंदावन की लीला और पूर की लीला माने द्वारका की लीला दोनों को मिला करके लिख रहे थे। और श्रीमद भागवत जैसे दुखांत है, विरह युक्त है, उन्होंने विरह के बाद में मिलन दोनों का संयोग कराना के लिए चाहते थे और ये बतलाना चाहते थे रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि राधिका और उनकी सखियों के ही प्रकाश विग्रह हैं, अलग से नहीं है, ये दिखला करके दोनों में मिलन कराना चाहते थे। इसलिए दोनों का मंगलाचरण, नंदीमुख और सब जो चीजें हैं एक ही कर करके वो लिख करके आ रहे हैं। काशी में सत्यभामापुर में जब आए उड़ीसा की सीमा में रात में विश्राम कर रहे थे तो हठात करके उनको स्वप्न हुआ, देखो तुम पूर की लीला को और वृंदावन को एक मत मिलाना, अलग अलग से करना। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी उनको ऐसे ही कुछ यहाँ जब आए तो उन्होंने महाप्रभु जी ने भी ऐसा कुछ उनको कहा, प्रेरणा दी ये दोनों को लीलाओं का एक मत करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, लोग नहीं समझ सकेंगे। अलग अलग
कृष्ण को ब्रज से बाहर मत,
कृष्ण को ब्रज से बाहर मत निकालना। वृंदावनम प्रत्यज्य वृंदावन को छोड़कर के कृष्ण जाते नहीं, उनको कहीं द्वारका और मथुरा में मत ला देना और द्वारका वाले को ब्रज में मत पहुंचाना। बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के रूप गोस्वामी ने यही पर ललित माधव और विदग्ध माधव उसको दो खंडों में कर करके यहीं से आरंभ किया और इसको पूर्ण किया जा करके वृंदावन में राधा दामोदर जी जहाँ है सेवा कुंड में जाकर के अपने भजन स्थली में इसको पूरा किया, किंतु आरंभ यहीं से किया। ये स्थान
यही पर महाप्रभु जी ने समस्त भक्तों के साथ में इस ग्रंथ का श्रवण किया।
महाप्रभु ने जब श्रवण किया तो उसमें अनर्पित चरण चिरात जब लिखा और उसका पाठ किया नंदीमुखी श्लोक, महाप्रभु जी ने कहा है क्या कर दिया, एक घड़ा अमृत और उसमें दे दिया
एक बूंद सूरा,
सूरा दे दिया मिला करके चौपट तुमने कर दिया, इतना सुंदर ग्रंथ लिखा था। स्वरूप दामोदर जी ने कहा नहीं ये घना दूध था, इसमें कर्पूर इलायची और ये सब चीजों को दे करके इसका सुगंध और बढ़ा दिया, माधुर्य बढ़ा दिया, पहले जरा पतला दूध था इसने घना दूध करके और उसमें कपूर और तरह तरह जी की केवड़ा इत्यादि देकर के बहुत ही सूरा सुगंधित बना दिया। ये चैतन्य चरितमृत में ये यही श्लोक को लेकर के हमारे कृष्णदास कबीराज गोस्वामी ने वंदना की है। सबसे पहले इसका अर्थ हम कुछ कुछ बतलाए, पूज्यपाद महाराज जी आगे बतलाएंगे, आज बहुत विलंब हो गया है, आज हम लोग प्रणाम करते चले, समय अनुसार में और सो जो बातें हैं बतलाएंगे। उनके निर्जान का समय भी, निर्जान का भी महाराज ने बात बतलाया कि यहीं पर हरिदास ठाकुर जबकि प्रसाद ग्रहण नहीं किया लेकर के आए तो उन्होंने कहा जा आज लंघन करूं, आज प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगा, आज मेरी तबीयत खराब है। महाप्रभु दौड़ करके आए, पूछा जी क्या आपको हो गया, नहीं कुछ नहीं हो गया, आज नाम संख्या पूरा नहीं हुआ। महाप्रभु तुम्हारा नाम संख्या तुम्हारा बहुत सब समय पूरा हो गया, आप कुछ प्रसाद पाइए। उन्होंने कहा नहीं आज तो आप यहीं पर रहें, आपका ये मुख दर्शन करता रहूं, आपके चरण को अपने हृदय में धारण करूं और कृष्ण कृष्ण कहता हुआ आपके सामने इस शरीर को मैं त्याग करता हूं, आपका जब चले जाएंगे आपका विरह हम नहीं सह सकते हैं, इसलिए पहले मैं जाना चाहता हूं। ऐसा कर करके महाप्रभु जी उनको कीर्तन करने लगे, बेड़ा कीर्तन, सब भक्त लोग कीर्तन करते हुए उनकी परिक्रमा करने लगे और उनको सिर अपने गोदी में ले लिया और ये कृष्ण कृष्ण कहने लगे, महाप्रभु जी का मुखारविंद दर्शन करते करते हरे कृष्ण
हरे कृष्ण
नहीं कर सके और शरीर को त्याग कर दिया। महाप्रभु जी उठा करके उनको ये देखे ले जा रहे अपराकृत कलेवर को और अपने हाथ से हमारा जो मठ है वही मठ ही हरिदास ठाकुर जी का समाधि का स्थान समाधि कर दिया। समाधि माने समधि, सम जो भगवान के सेवक होते हैं भगवान ही जैसे होते हैं उस रूप में कर दिया और अपनी सेवा में सदा के लिए नियुक्त कर दिया। बोलो हरिदास ठाकुर
मंदिर छिलो सब
আপনার এখানে দর্শন করে
দুরান্তালোচনা স্থান।
আপনি বেদান্ত শুনেছেন,
এখানে উপরে বসুন,
আমরা নিচে বসি।
আমরা যেখানে উপস্থিত হয়েছি এটা হচ্ছে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের স্থান। তিনি ছিলেন বৃহস্পতির অবতার, তিনি অদ্বৈতবাদের তদানন্তন কালেতে ভারতবর্ষ মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী। তিনি আবার রাজার এখানকার প্রতাপরুদ্ধ রাজা
রাজপণ্ডিত
রাজপণ্ডিত ছিলেন, হয়কে নয় নয়কে হয় করতেন, নির্বিশেষ ব্রহ্মের তিনি আরাধনা করতেন। পরবর্তীকালে চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তিনি প্রভাবিত হয়ে পরম বৈষ্ণব হয়েছিলেন। মহাপ্রভুজিকে এইখানে প্রসাদ পাইয়েছিলেন, তারপরে এইখানে সাত দিন চৈতন্য মহাপ্রভুকে বেদান্ত শ্রবণ করিয়েছিলেন। মহাপ্রভু এইখানে বসে শুনেছিলেন, সাত দিন শুনবার পরে কিরকম হয় তাহাকে কৃপা করলেন, কি বিচার হয়েছিল। পরবর্তীকালেতে ওই পুটিয়া নরেশের কন্যা সুশী দেবী এইখানে এসে কিরকম হয়তো স্থানটাকে আবার উদ্ধার করলেন, আবার সুরম্য এই সবগুলি প্রতিষ্ঠিত হল, রাজভবন আবার পুনঃ ইটা হল, আর এইখানে কিরকম হতে কি শ্যামরায় দুনো না, ও কেসে ইয়া পর স্বয়ং উনকি সেবা লেনে কে লিয়ে পধারে। রাজা ভি গঙ্গা মাতা ঠাকুরানী কা শিষ্য বন গয়া, আর জগন্নাথ জি কে পাদ পদ্ম সে কেসে গঙ্গা নিকলি, আর উসমে ও জগন্নাথ জি কে মন্দির মে চলি গই, আর ফির রাজা সব লোক উনকে পরিকর সব লোক উনকে শিষ্য বনে। ये সব ঘটনাও সে সম্বন্ধিত স্থান হয়, বহুত পবিত্র স্থান হয়। ইসকে সম্বন্ধ মে শ্রীমান শুভানন্দ ব্রহ্মচারী জি আপ লোগো কো কুছ চালো জি গঙ্গা স্নান করবো, তখন সব ভক্তরা গঙ্গা স্নান করতে যাচ্ছে।
আগে গঙ্গা মাতা কি বলে দিন,
গঙ্গা মাতা হচ্ছেন কুটিয়া নরেশের কন্যা সতী দেবী। তিনি বাল্যকাল থেকে কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, আর মনে মনে কৃষ্ণকে শ্যাম সুন্দর কহি উনোনে পতি আপনা বনা দিয়া, জেসে গোপীয়কে প্রাণ প্রিয়তম হ্যাঁ এসে উনোনে বনা দিয়া, আর কিছু সে শাদী নেই করেন। কুছ দিনো কে বাদ মে উনকে পিতা মাতা জব চলে গে স্বর্গবাস উনকা হো গয়া, তো ইয়ে ঘর ছোড় করকে পহলে জগন্নাথপুরী মে আই, আর ইহাঁ পর জগন্নাথ জি কা সব দর্শন কিয়া, আর দর্শন কালে করকে তৃপ্তি নেই হো তো ফির বৃন্দাবন মে গে। উসমে রূপ গোস্বামী জি কে পরিকর আর গদাধর পণ্ডিত কে শিষ্য আর উনকে শিষ্য হরিদাস জি গোস্বামী জি গোবিন্দ মন্দির মে প্রধান পূজারি থে, বড়ে বিদ্বান আদমি থে, বড়ে ভক্ত থে, রসিক ভক্ত থে। বৃন্দাবন মে ঘুমতে ঘুমতে উনকে চরণ মে গই, উনকে চরণ মে প্রণত হোকর কে উসনে কহা হম আপসে মন্ত্র লেনা চাহতি হ্যাঁ আর ভজন শিক্ষা চাহতি হ্যাঁ। উনোনে কে নাই তুম সুকুমারী বালিকা হ্যাঁ, রাজার কি লড়কি হ্যাঁ, তুম আপনে ঘর মে চলি যাও, ইয়ে বৃন্দাবন মে রহনা বড়া ভারি মুশকিল হ্যাঁ, তুমারি রক্ষা করনে কে লিয়ে চিন্তা করেঙ্গে না ভজন করেঙ্গে। কিন্তু উসকে ভাবনা কো দেখ করকে আর দৃঢ়তা দেখ করকে উনোনে উসকো গ্রহণ কর লিয়া, আর উনকো গোপাল অষ্টাদশ সাক্ষর মন্ত্র দিয়া। বড়ি বিদুষী মহিলা থি, বিদ্বান থি ভি, উনকে জিতনে ভক্তি রসামি সিন্ধু উজ্জ্বল নীলমণি ইত্যাদি জিতনে গ্রন্থ থে সবকা বিধিবত অধ্যয়ন কিয়া আর শ্রবণ কিয়া। কুছ দিনো কে বাদ মে উনকে এক আর শিষ্যা থি প্রৌঢ় হরিদাসী ইয়া ক্যা নাম থা, উসকে হাত জেসে মহাপ্রভু জি নে দে দিয়া থা স্বরূপ দামোদর কো রঘুনাথ কো, তখন রঘুনাথ স্বরূপের দাম উনি হলেন রঘুনাথ। এসে হি উনোনে উসকো প্রৌঢ়া জো উনকি ভক্ত থি শিষ্যা উনকো দে দিয়া, তুম ইসকি রক্ষা করনা পালন পোষণ করনা ইসকে ভজন কর সকে এসে তুম ব্যবস্থা করনা। কুছ দিন কে বাদ উনে কাজে যাও তুম রাধা কুণ্ড মে রহো, ভাগবত শ্রবণ করো, और जैसे हमने कहा है परम विरक्त हो करके और तुम भजन करो, ठीक वैसे ही 300,000 हरिनाम करती, भागवत अध्ययन करती और उसका श्रवण करती, रूप गोस्वामी के ग्रंथों का अध्ययन करने लगी और गिरिराज की परिक्रमा रोज करती कठोर भाव से, बहुत थोड़ा सा सूक्ष्म को आहार लेती, सोती नहीं, इस प्रकार से भजन करते 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 जब प्रौढ़ हो गई और उधर में वो हरिदासी जी अप्रकट हो गई, फिर अपने गुरु जी के पास में आई, उन्होंने कहा अच्छा तुम जाओ पुरी में, महाप्रभु जी गंभीरा में रहते थे उसी के पास में साध मोहम्मद भट्टाचार्य का स्थान था, वो लुप्त हो गया है, तुम वहीं पर जाकर के भजन करो और स्थान को फिर से प्रकाश करो, उस स्थान को कोई नहीं जानता, वो यहां पर आए। अर्थात भजन में कुछ अभी सिद्धि में अभी कुछ कमी थी, अब चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरा जी की कृपा से उसका वो सिद्धि होगा, इसलिए यहां पर भेजा, यहां आकर के इसी स्थान पर छोटी सी झोपड़ी बनाई और भजन करती थी, शाम को थोड़ा सा भागवत पाठ करती थी, व्याख्या ऐसा पाठ करती थी, धीरे 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 यहां के जितने बड़े बड़े विद्वान लोग आने लगे और राजा उस समय मुकुंद कोई थे, मुकुंद राजा वो भी आने लगे, धीरे धीरे चारों तरफ में जैसे महाराज ने कहा फूल का सुगंध अपने आप फैल जाता है और उसे आकृष्ट होकर के भौरे आने लगते हैं, श्रोता लोग यहां पर होने लगे। कुछ दिनों के बाद में राजा ने कहा जैसे ये जगत तुम ले लो, तुमको हम देते, हमको स्वप्न हुआ है, उसने हम लेकर के क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे। ठाकुर जी ने फिर उनको स्वप्न दिया जी नहीं, तुम्हारे गुरु जी ने कहा इस स्थान को प्रकाश करना है इसलिए तुम ले लो, तो राजा ने उनको यह स्थान दे दिया, वहीं पर अब अपनी पूजा करती और भागवत का पाठ होने लग गया। एक दिन वही यहां पर आते हुए गंगा स्नान करने के लिए विशेष तिथि में
गंगा दशहरा
दशहरा या कोई और होगा त्रयोदशी के दिन कुछ, तो उसमें स्नान करने के लिए सब लोग जाने लगे, इनकी भी जाने की उत्कंठा हुई, किंतु उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था, जगन्नाथ ने देखा जैसे हमारी सेवा छोड़ करके और सार्वभौम भट्टाचार्य का सेवित शालग्राम यहाँ पर थे अभी भी है और श्यामराज भी यहाँ पर, इनकी सेवा छोड़ करके कैसे जाएगी, इसलिए जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया तुमको वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम ये श्वेत गंगा में तुम रात में स्नान कर लेना और वहीं पर गंगा अपने आप आ जाएगी, रात में आधी रात के समय में श्वेत गंगा में वो गई, जब ही डुबकी लगाई हो हल्ला होने लगा, गंगा जी की जय दे करके मानो लाखों लोग उसमें स्नान कर रहे हैं और एक धारा जगन्नाथ जी के चरणों से प्रवाहित हुई और प्रवाहित होकर के यहां पर आई और उनमें इसको लेकर के और जगन्नाथ मंदिर में उनको पहुंचा दिया। इनको समझ नहीं कि हमको कैसे धारा ले आई, दरवाजा बंद है और खूब जोर से कोलाहल हो रहा है, सब लोग स्नान कर रहे हैं, इतने में दरवाजा सवेरा हो गया, सवेरा हो गया और ये तो भजन में अपना भाव में मग्न है, थोड़ी देर के बाद में दरवाजा जब खुला गया तो देखा जी भीतर में ये
बैठी
खड़ी होकर के ना जाने क्या कर रही, उन्होंने कहा ये चोर है, आज तक इसका स्वरूप हम लोग नहीं समझे, ये दरवाजा बंद करने के पहले ये घुस गई थी और जगन्नाथ जी का ही राजवारात लेकर के भग जाएगी इसलिए ये घुस गई थी, उसको कैद कर लिया, राजा को खबर दिया गया, इसको जेल में बंद कर दिया गया, इसको छोड़ा नहीं जाए, इसको दंड देना होगा। रात में जगन्नाथ जी ने मुकुंद देव को राजा को स्वप्न दिया, अरे ये हमारी बड़ी प्रिय भक्त है, ये साधारण सिद्ध भक्त है, जल्दी से जाकर के उसे क्षमा मांगो और उसको छोड़ो और तुम और तुम्हारे जितने मंदिर के बड़े बड़े पुजारी हैं
मंत्री
हैं और तुम्हारे सभासद इत्यादि हैं सब लोग जाकर के उसे मंत्र लो और नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। जब वो स्वप्न देखा बस दौड़ करके आया, राज पुरोहित को परीक्षा को लिया और लेकर के जाकर के उसे क्षमा मांगा और चरण में गिर गया, देवी आप हमको क्षमा कीजिए, हम लोग आपको जानते नहीं थे, ये लोग जानते नहीं है, इस स्थान पर ले आए, बोले ये सब स्थान तुम्हारा है, पहले तो दे दिया था, अब कहा हम यहां पर जो कुछ कहेगी वैसा कर देंगे, तुम हमसे कुछ ले लो। उसने कहा कि हम कुछ नहीं लेंगे, हम तो जगन्नाथ जी के चरणों में हम आई हैं, महाप्रभु जी के भावों को, रूप सनातन इत्यादि के भावों को लेकर के भजन करने के लिए। उनका एक ही भाव है, दूसरा भाव नहीं। क्या भाव है? गोपीर अनुगत में रह करके हम राधा कृष्ण जुगल की सेवा करें, बस इसी के लिए हम आए, और कुछ नहीं लेंगे। मैं शिष्य किसी को नहीं करती, आपको भी शिष्य नहीं करूंगी। राजा ने कहा जैसे तब जगन्नाथ जी की बात झूठी हो जाएगी, आप कृपा करके हमको और ये सब लोगों को शिष्य करें। फिर रात में उनको स्वप्न हुआ जे नहीं देवी, आप इन लोगों को मंत्र दीजिए। तब उन्होंने कहा जो मैं और किसी को नहीं दूंगा, केवल आपको दूंगा। मुकुंद राजा को गोपाल मंत्र उनको दिया और भजन में उनको, अब तो सारे पुरी के लोग उनको पहचाने, अरे ये साधारण नहीं, सब लोग यहां पर आने लगे। धीरे धीरे उन्होंने राजा के कहने से, राजा ने यहां पर विशाल फिर से मंदिर बनाया, श्याम राय वहां प्रतिष्ठित थे, उनकी सालग्राम शिला यहां प्रकाशित हुई। आप लोगों को पुजारी जी बतला देंगे जो किसका किसका कौन सा विग्रह है, अभी प्राचीन सेवित है। तो उन्होंने फिर से प्रकाश किया, श्याम राम के संबंध में हमने पहले बतलाया है, इन सब की प्रतिष्ठा करके फिर पूजा अच्छी तरह से चलने लगी। शिष्य उन्होंने नहीं किया था कोई इत्यादि, किंतु अंत में जब ये बूढ़ी हो गई तो कोई एक स्मार्ट ब्राह्मण का कोई विद्वान लड़का था, वो इनके चरणों में गिर गया जो हमको मंत्र दिया, हम तो नहीं देंगे। फिर आपने स्वप्न है तुम्हारे ये मंदिर की सेवा कौन करेगा, इसलिए तुम इसको मंत्र दे दो। तो उनके कहने से उनको मंत्र दिया और वो महाप्रभु जी की कृपा से बड़े उन्नत वैष्णव पीछे से हो गए और उनके बाद में उनकी सेवा पूजा करते रहे। आज धीरे 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 आज करीब करीब 300 वर्ष हो गया पुराना मंदिर फिर टूट गया, फिर पानी उधर में चारों तरफ में गिरने लगा, अब किसी प्रकार से यहाँ की सेवा पूजा चल रही है, चल रही है, किंतु छिप्त विक्षिप्त रूप में चल रही है। प्रभु ऐसे ही कोई महापुरुष को यदि भेजेंगे फिर ये स्थान वैसा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। वो गंगा माता ठाकुरानी जी श्री सारधाम भट्टाचार्य जी कृपा करें, सचिनंदन कृपा हम लोगों पर करें, जो हम लोग भी राधा कृष्ण के इस भजन मार्ग में, महाप्रभु के प्रदर्शित भजन मार्ग में प्रतिष्ठित होकर के भजन करके हम लोग कुछ अनुभव प्राप्त कर सकें, यही प्रार्थना करके अब हम लोग जगन्नाथ मंदिर में चलेंगे। आप लोग यथासाध्य कुछ कुछ प्रणामी यहाँ पर देंगे, जहाँ जा कृष्ण प्रति जी काम, कृष्ण सेवार जन्य जी काम, ओटा काम मने हो, किंतु यही कामटा एमन जे यही कामटा जदि एसे जाए वो सहज भावे ते चल जाए, एक बारे सहज भावे और जन कोनो प्रयास करते हुए ओते औसत खेते कुनैन खेते ना एक टू कष्ट आछे, सुगर कोटे कुनैन खेले कोनो विशेष ही नाई, तबे दुर्बलता थाकबे आर ये औसत तमन जे खेते हुए मिष्टी सुनते हुए मिष्टी भीतरे गेले हुए मिष्टी आर तार फलता हुए सब तेके चलते एमनी टा देखते सामने किंतु ठीक विपरीत, वो निश्चित काम रोक के खूब मतलब तत्क्षणात दूर कर अचिरेण बोल अचिरेण धीर, धीरा माने पंडित, पंडित माने कि दूटा धीर माने अर्थ कर ले, एक धीर माने होचे पंडित, पंडित माने एखाने तत्व जान अर्थात जरा एटी बोले जे हृदय रोग माने कामना बासना थाकले कखनो प्रेम होते पारे ना, कखनो होते पारे ना, जरा बोलछे एरा नास्तिक, एरा होच्छे मूर्ख, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठक शब्द देते क्यों शास्त्रीते जे लिखा आछे हृदय रोग आशु अपिनुक्त सुखदेव गोस्वामी अनुभव करे एक कथाटा बोलछे परीक्षित महाराज के अत निश्चित हो जाने ओटे
नास्तिक एवं अविश्वास राहित्य और मध्य नाई जन पंडित शास्त्र विश्वास एरकम हो धीर व्यक्ति जदि श्रद्धान्वित श्रद्धा पूर्वक এইটাকে শুনে কতদিন অনুমানে নিরন্তর শুনে আর শুনবার অথবর্ণে তো তখন ভক্তি পরাম ভগবতী ভগবান এতে ভগবান এখানে কে ওই যে সর্বব্যাপী যে বিষ্ণু বললেন বিষ্ণু বললেন বিষ্ণু মানে এখানে কে দু দুটি গোপী মধ্যে এক একটি কৃষ্ণ অথবা দু দুটি গোপী ভিতরে একটি কৃষ্ণ অথবা দু দুটা কৃষ্ণের মধ্যে এক একটি গোপী ওই যে এত লক্ষ কোটি গোপীগণ তাহার ভিতরে যে আছে উনি এখানে বিষ্ণু চাহে ওটা ক্ষিপ্রগতি যা হোক চাহে যে কোনো ভাবে হোক ওইটা হচ্ছেন বিষ্ণু ওই বিষ্ণুটা এখানে স্বয়ং ভগবান বলতে গেলে মথুরেশ এবং দ্বারকেশকে বুঝবে কৃষ্ণকে বলবে না কেন ওখানেতে গন্ধ আছে স্বয়ং ভগবান হলেও ব্রজেতে তাহার ভগবত্তাটা প্রকটিত নাই এই জন্য প্রথমেই বলছেন যে এতে চা অংশকলা কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং ওখানে তিনজনকে মিলিত ভাবে তো ওখানে বলা হয়েছে স্বয়ং ভগবান কিন্তু ব্রজের যে ব্রজেন্দ্রনন্দন তিনি স্বয়ং ভগবানের থেকেও আরো যদি কিছু থাকে তার মধ্যে থাকলেও সেইটি প্রেমের দ্বারা আচ্ছাদিত আছে সেখানে তাকে যশোদা মা সখা এমনকি সেবক বর্গ গোপীগণের কথাই বলে যদি কেউ বলে যে ভগবান তাহলে তাকে ভেঙচাবে তার ঠাট্টা বিদ্রুপ করবে এমনকি কৃষ্ণ যদি বলেন যে আমি ভগবান তাহলে বিদ্রুপ করবে হাসবে ওরা সব ঠাট্টা করবে এই জন্য এখানে একেবারেতে মধুর শাশ্রিত অথবা মধুর মানে এখানে সবই সখ্য বাৎসল্য মধু তিনটাকে ধরা ইনি ব্রজেন্দ্র নন্দন ইনার ভগবত্তা থাকলেও সেটি আচ্ছাদিত ওই যে ভগবান ওই ভগবানের প্রতি কোন ভগবানের প্রতি গোপীগণের অনুসরণ করে গোপীগণের ভাব পর্যন্ত তাহাদের হবে ভক্তি মানে কি পরাভক্তি মানে কি পরাভক্তি মানে শ্রেষ্ঠা ভক্তি এখানে শ্রেষ্ঠা ভক্তি এখানে অর্থ করা হবে না ওটা সাধারণ লোকের পক্ষে পরাভক্তি মানে যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দ বলেছেন গোপী ভাব গোপীগণকে অনুসরণ করে যে রাগানুগা পরে রাগাত্মিক হয়ে যায় কালক্রমেতে ওইটি হবে গোপীগণের কৃষ্ণের প্রতি যে ভাব ছিল ওই ভাবটা এর মধ্যে তাহাদের অধিকার ওই পরাভক্তি অতএব ওখানেতে এই যদি শ্রবণ করে ওই রকম শ্রদ্ধা অনুসারে ভগবানের প্রতি প্রতিলব্ধ কাম কৃষ্ণের প্রতি ওই যে ভগবান ব্রজেন্দ্র নন্দন গোপীগণের যে ভাব ছিল কাম ওই কামকে প্রতিলব্ধ প্রতিলব্ধ মানে নিত্য নিরন্তর নূতন ভাবেতে নবভাবেতে ওই প্রেম থাক ভিতরেতে এসে কি করবে ধীরে 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 কখন বুঝলে বুঝবে না আর ওই কে হৃদরোগ আসুন হৃদরোগ একবারে চলে বুঝতেই পারা যাবে না কখন চলে গেল যেরকম হাতে বলেছেন তাহার লীলা কথা হচ্ছে নৌকা কি নাম হচ্ছে নৌকা নৌকাটাকে নিয়ে এসেছেন এই পারে ভসাগরের ও পারে বৈকুণ্ঠ অথবা ব্রজ আর এ পারে হচ্ছে জগৎ মহাপ্রভু কি কৃষ্ণ কি ভগবত তত্ত্ব কি বৈষ্ণব তত্ত্ব নাম নিয়ে এসেছেন এ পারে ওরা আসলো যে নামকে নামেতে আমরা আরূঢ় হয়ে ভগবানের লীলা কুথা রূপী নৌকাতে আরূঢ় হয়ে আমরা ও পারে যাব যখন ঘাটে আসলো দেখলো যে সে নৌকাটা এই পারে আছে আর আমি ও পারে হয়ে চলে গেল সাধক যে আছে দেখলো যে ও পারে চলে গেল আর নৌকাটা যেখানে যেখানে ঘাটেতে এই পারেতে এই পারে আছে এমন নামের আর হরি কথার প্রভাব কি শ্লোকটা সমাসিতা যে পদ পল্লব পল্লবন মহৎ পদম পুণ্য যশো মুরারে भवान बुधे वत्स पदम परम पदम पदम न विपदानुमति हे श्लोकते ओरा सब कुछ व्याख्या करे छे एई पारे नौका थेके गेल आर ओ पारे पहुंचे एई रकम होय अचिरे न धीरह आ सबगुली औषधि आछे किन्तु हयते एकटु देरी करबे अथवा তার মধ্যে আরো কতগুলি হতে পারে কিন্তু হবে কিন্তু হতে কষ্টসাধ্য কিন্তু এটা কষ্টসাধ্য না এটা খুব সুখসাধ্য এমন যে হরি কথা আর ওটি কার মুখেতে তৃতীয় শ্লোক দশম স্কন্ধে প্রথম চতুর্থ নিবৃত্ত সেই উপগীয়মানাত ঔষধাত স্বপ্ন বিরাম উত্তম শ্লোক গুণানুবাদ আর একটি কথা অনেকে জিজ্ঞাসা করছে যে কালকে আমরা না পরশু গিয়েছিলাম মহাপ্রভুর ওখানে জগন্নাথ দর্শন একটা বুড়ি মহাপ্রভুর কান্ধাতে পায়ে রেখে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করছে আর মহাপ্রভু বললেন না না তাকে বারণ করো না গোবিন্দ হায় হায় এর মতন আমার আবেশ নাই এটাকে দর্শন কর তখন তিনি শান্ত হলেন ও দর্শন করে যখন নাবলো তখন দেখলো যে আরে এইটা তো মহাপ্রভু তখন তার বোধ হয় প্রণত হয়েছিল নাকি লেখা আছে তো কিন্তু মহাপ্রভু বললেন যে না বলো না তিনি একান্ত হতে তিনি জগন্নাথকে দর্শন করছেন আর অন্যদিকে তিনি গীত গোবিন্দের পদ শুনছেন আর দৌড়াচ্ছেন একটি কোন যুবতি মেয়ে মাঠেতে গোবরের শুকনো কাণ্ডা বিনছে আর মহাপ্রভু ওই গীত গোবিন্দের পদ শ্রীত কুচ মন্ডল শ্রীত কমলা কুচ মন্ডল হে শ্রীত কুণ্ডল হে কলিত ললিত মনমাল জয় জয় মহাপ্রভু এক কালে দৌড়াই হো সবাস নাই তারপরে গোবিন্দ বললেন যে সে যখনই একেবারে ধরতে একেবারে যখনই যাচ্ছেন তখনই উনি বললেন আরে এটা মেয়ে লোকের গান করছে সঙ্গে সঙ্গে তুমি গোবিন্দ যদি আজকে না বারণ করতে আমি প্রাণ প্রত্যাগ করতাম সিন্ধু জলে গিয়ে এরকম হতে মেয়ে তো এক জাতি অত সেখানে প্রাণ প্রত্যাগ করবার কথা বলছেন আর ইনি এখানে বলছে যে আচ্ছা আমার কান্দাতে দিয়েছে কোনো কথা সাধারণ কথা বিশেষ কোনো সামান্য একটু তত্ত্ব জ্ঞান হলেও সামঞ্জস্য হয়ে যায় কৃষ্ণ অথবা যে কেউ বিশেষ করে ভগবত তত্ত্ব ও তিনি রস বৈশ হলেও রসিক হলেও যে রকম যে লোক তাহার কাছে তাহার ওই রকম ভাব প্রকটিত কংসের নিকটেতে যে কৃষ্ণ ওই কৃষ্ণ কিন্তু তার ভাবান্তর কুবজা কাছে সেই কৃষ্ণ কিন্তু ব্রজের ভাব নাই মা যশোদা কাছে সেই কৃষ্ণ সেখানে বাৎসল্য ভাব আসবে গোপীর গণ নিকটেতে যত রকমের গোপী যার কাছে যখন থাকবেন ওই রকমের ভাব নিয়ে ওই রকম হতে এখানে দেখা যায় জগন্নাথ মন্দিরেতে যে আবিষ্ট হয়ে মেয়ে দর্শন করছে ওই অনুসারে তো চৈতন্য মহাপ্রভু হয়েছে দেখি এইরকম আবেশ আমারও যদি হতো আমার জীবন ভিন্ন ওই রকম আবেশের প্রয়োজনে এটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি বলেন যে কত বড় জিনিস এটা যে জগন্নাথের মানে অবেশ এত হয়ে গেল যে কাঠের খাম্বা আছে না পাথরের খাম্বা না কি মানুষ আছে না মহাপ্রভু আছেন কোনো দিক দিক জ্ঞান নেই আবিষ্ট হয়ে তাকে দর্শন যখন দর্শন করে নিল আবেশ তাহার যখন সমাপ্ত হয়ে গেল যখন নাবলো দেখলো যে সে তখন জ্ঞান তার মহাপ্রভু বললেন যে সে এইরকম ভাবে আবেশ জগন্নাথ দর্শন হওয়া এখন ওই যে গান করতে ছিল গীত গোবিন্দ পদ, যে কান্দা বিন ছিল কি লাকড়ি শুকনো বিন ছিল, ওই মেয়েটার ওই রকম আবেশ ছিল কিনা, আকি মহাপ্রভুর আবেশ ছিল? মহাপ্রভুর আবেশ ছিল শুনে, কিন্তু ওই মেয়েটার কোনো আবেশ ছিল না। এই জন্য তাকে যদি ছুঁইতেন তাহলে প্রাণ প্রত্যাগ করতেন, কিন্তু ওই মেয়েটার মধ্যে যদি সেই রকম আবেশ হতো তাহলে হয়তো তিনি তার পায়ে ছুঁই দিলে তার কোনো কিছু আসে যায়, যেরকম রায় রামানন্দ মেয়েদেরকে নিজে থেকে ভাও ইত্যাদি দেখাচ্ছে, তার অঙ্গ মার্জন করছে, তাকে নানা প্রকারের শৃঙ্গার ইত্যাদি করছে, তাকে মহাপ্রভু প্রশংসা করলে। ওই রকম ভাবে শিখায় দেবী দাসী, ওরা যখন রায় রামানন্দ নিজে শিখাচ্ছেন তখন বুঝব যে সে কিরকম হবে। এই জন্য ভাব দেখে যাহার মধ্যে ওটা ভক্তি থাকবে তাহার প্রতি ছোট হয় দাসকে হয়তো প্রত্যাগ করে দিলেন, রায় রামানন্দকে প্রত্যাগ করবেন? এই জন্য যার মধ্যে যে ভাব আছে গুণ আছে ওই গুণটাই আমাদেরকে গ্রহণ করবে। এই জন্য সে ওখানে দোষাও হবে না তার কন্ধার উপর চাপলে, কিন্তু অন্যত্র ওটা দোষাও হতে পারে। দেখে শুনে মানে পরিস্থিতি পরিবেশ অনুসারে এইসবগুলিকে বিচার করতে হবে। মহাপ্রভুর মধ্যে যখন প্রথম দর্শন করতেছিলেন তখন তার ছিল হয়তো দিব্য উন্মাদ হতে পারে, কারণ সেই তো প্রাণনাথ পাইনি, ব্রজেন্দ্র নন্দনকে তিনি দর্শন করছেন, কিন্তু ভাবটা সবসময় চব্বিশ ঘন্টা একরকম থাকবে তা নাই, দিনের মধ্যে কতবার চড়বে, কখন কখন নাবে, কখন কি হবে, যখন ওটা রাখতে লাগলো তখন ভাবিস হয়ে দেখছেন, কিন্তু ক্ষণ হয়তো খোঁজ খন পরে নেবেছে, তখন গোবিন্দ বলেছেন, তখন আরো তার বাহ্যে এসেছে, তখন তিনি বলেছেন থাক এটা কোনো অসুবিধা নেই। আমরা কালকে পরশু টোটা গোপীনাথ হেঁটে গিয়েছিলাম, আমলোক টোটা গোপীনাথ মে কল পরশু গে, তো ওহা পর কেসে গোপীনাথ জি প্রগট হুয়ে, আর যে নিত্যানন্দ প্রভুজি ওহা পর পধারে, ও নবদ্বীপ সে ইয়া বঙ্গাল সে বহুত সুন্দর চাউল লে আয়ে থে, সূক্ষ্ম চাউল, আর সাথ মে এক রঙ্গীন আচ্ছা সা কোই কপড়া লে আয়ে, গদাধর পণ্ডিত জি কো দিয়া, বড়ে প্রসন্ন হুয়ে, আর আজ নিত্যানন্দ প্রভুজি কো প্রসাদ দে, তো উন্হোনে চাউল কা তো অন্ন বানায়া, আর উসকে সাথ মে ক্যা বানায়েঙ্গে, উন্হোনে নিম ইসকা তেঁতুল ইমলি কা কোমল কোমল পত্তা দিয়া, নমক ঘর মে নেই হ্যায়, ঘরে নমক নাই, সমুদ্র কা পানি, উস সময় সমুদ্র পাশ মে নিকট, জেসে হাম লোককে দেখতে দেখতে কল তক অবি ইয়াহাঁ পর সমুদ্র থা, হামারাই ঘর অন্তিম থা, আমাদের মঠটাই অন্তিম ছিল, এরপরে আর ঘর ছিল না বাড়ি ছিল, কিন্তু আজ থোড়া সা উধার মে চলা, এক অর রাস্তা নিকল গিয়া, হ্যাঁ বস, আর ইধার ইয়ে সব কিছু নেই থা, এই প্রভুপাদ জি কা পুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠ উধার মে থা, বাকি সব এসা হি থা, তো ইয়ে সব জলদি সে ইতনা জলদি বদল গিয়া, তো উনকে ঘর মে নমক নেই থা, নমক রাখতে নেই থে জান বুঝ করকে, যদি ইনসে ভি ইনকি দাসিয়া ইনকি ইয়ে হ্যাঁ রাধাজি স্বরূপা, আর ইনকি দাসিয়া হ্যাঁ রূপ সনাতন রূপী রূপ মঞ্জরি, আর ইয়ে সব রূপ সনাতন রঘুনাথ গোস্বামী অথবা স্বর গোস্বামী, জব ওই লোক জীবন ভর আপনা মুখ মে লবণ নেই দিয়া, অলবণ ওটা কি মাধুকরি কি সুখোজ রুটি ইয়ার জানা, তো ইয়ে গদাধর পণ্ডিত কে লিয়ে কেসে সম্ভব হোক, রঘুনাথ দাস কে লিয়ে কেসে সম্ভব হোক, ঘর মে নমক নেই, ইমলি কা পত্তা কোমল কোমল লে, और समुद्र के पानी दे करके नमकीन बनाया थोड़ा, और उसका सुंदर एकदम वो चटनी जिसको कहते हैं टॉ, उन्होंने खूब मधुर अम्ला उन्होंने तैयार किया। यहां पर रसोईया राधा जी हूं और उसका एकत्र करने वाला सामान नित्यानंद प्रभु माने बलदेव जी हूं, वो कैसा उसमें रसास्वाद होगा। भोग लगाया गोपीनाथ जी को और जो ही बैठने वाले थे इतने में हरि बोल हरे कृष्ण कहते हुए आचंबित से महाप्रभु बिना निमंत्रण दिए वहां पर आ गए। अजय ये तुम्हारे की व्यवहार, ये तुम लोगों का कैसा व्यवहार। जहां पर गदाधर रसोई बना रहा है और नित्यानंद प्रभु हैं, इतना सुंदर चीज ले आए और गोपीनाथ का तुम लोगों ने मिल करके भोग लगाया, और इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, नहीं कहने से भी इसमें हमारा अधिकार है, इसलिए हम तो बिना बुलाए ये प्रसाद पाएंगे। बस वो भी बैठ गए, बस दोनों प्रभु को। इतने में और कोई आचार्य भी पहुंच गए, बस तीन प्रभु ये बैठे और गदाधर पंडित थे, गोविंद जी थे ही, और दो चार भक्त लोग उसी में आ गए। महाप्रभु मांग करके वो प्रसाद का जो अवशिष्ट रहा तीनों के बाद में भक्त लोगों ने लूट लिया, पप्पा ही लूट लिया, उन्होंने वो लूट लिया और उनके हाथ से दूसरे जितने भक्त हैं वो सब लूट करके छीन करके परस्पर खान। इस तरह से वहीं पर ये हुआ और सनातन गोस्वामी का बतलाया, सनातन गोस्वामी अपने को मुसलमान जैसा समझते, कभी जगन्नाथ के मंदिर में नहीं गए। महाप्रभु ने ठीक दोपहर में उनको निमंत्रण दिया जिसे सनातन आज आकर के प्रसाद पाएगा गोपीनाथ टोटा। उस समय में जेठ का महीना, समुद्र के किनारे बालू जल रहा था, उस बालू पर आए और इतने आवेश होकर के नाम कर रहे थे कृष्णा, या महाप्रभु की चिंता। आज हमारा कितना सौभाग्य है,
महाप्रभु
जी स्वयं बुला रहे हैं प्रसाद देने के लिए, बस इसी की चिंता करते करते आविष्ट होकर के आ रहे थे, पैर में छाले पड़ते गए और मालूम ही नहीं। जब यहां आप पर पहुंच गए, कहे तुम कैसे आया, तुम रास्ते से आया या उधर से समुद्र के किनारे किनारे आया। प्रभु हमारा रास्ते पर आने का, राजमार्ग पर हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए मैं उधर से नहीं आया, मैं आया समुद्र के किनारे बालू पर। देखे तुम्हारा पैर तो देखे, तो पैर देखा तो सब फफोले पड़े गए उनके ऊपर से नीचे। बैठने तो भाई ये सुन करके याद आती है ब्रज की, गोवर्धन दोपहर में जल रहा है तवे के समान और कृष्ण गोचारण करते 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 गोवर्धन की नीचे की पहाड़ी पर गोचारण कर रहे हैं और ऊपर में पहाड़ के ऊपर में राधा जी वहां से देख रही हैं कृष्ण को। खूब गर्म है, ऊपर से भी गर्मी पड़ रही, नीचे से भी ये हो रहा है, उनको भी फफोले पड़ रहे, उनका तो चरण कमल और भी कोमल, किंतु उनको पता ही नहीं है गिरिराज गोवर्धन को इंद्र वज्र से मारे हैं, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। स्वप्रेष्ट हस्ताम बुजसौ कुमारजे सुखानुभूते रतिभूमि वित्ते महेंद्र वज्रा हतिमप्रजानन गोवर्धनो मे दिशताम। उनको वज्र से टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है, बड़े सुख से आनंद से हो रहे हैं, आज कृष्ण के मैं हस्त कमल के ऊपर में चढ़ा हुआ आनंद। ऐसा ही भक्तों को होता है, शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं, एक तो उनका प्राकृत शरीर ही नहीं, दूसरा यदि माने भी तो इतना आविष्ट है जो संसार का कोटि कोटि दुख भी उनको प्रतीति नहीं, इसलिए सनातन गोस्वामी कुछ मना है मालूम ही नहीं। बड़े आनंद के साथ में चले आए, फफोले अपने जगह पर पड़ते हैं। उसी प्रकार से महापुरुषों को जबकि मध्यम अधिकार से धीरे धीरे ऊपर में उठता है उत्तम मध्यम अधिकारी, अथवा उत्तम अधिकारी पहुंचता है उत्तम में कनिष्ठ, उसका कोई भी कष्ट नहीं रह जाता है, कोई भी कष्ट। भावावस्था में कष्ट आते हैं किंतु प्रतीति नहीं होती, अब प्रेमावस्था में कष्ट आता ही नहीं। जिसके साधन करने में साधन अवस्था में ही क्लेश अपनी भक्ति है, वो सब क्लेश दूर हो जाते हैं। भावावस्था में क्लेश रहते भी हैं थोड़े, उनको प्रतीति नहीं होती, और प्रेमावस्था में एकदम संपूर्ण रूप से रहता नहीं है, यही प्रेम का है। अखिल क्लेश अभिज्ञाता इसमें होता है, इसमें भावावस्था में, और उसमें रहता ही नहीं है क्योंकि कर्मफल उसमें है ही नहीं, इसलिए अप्राकृत ये नहीं है। यदि उनको नित्य परिकर्ण भी माने तो उत्तम भक्त तो मानेंगे ही सनातन गोस्वामी को, इसलिए उनको कष्ट की प्रतीति नहीं है। अंततः उनसे नीचे भी रहेंगे, मध्यम अधिकार में भी ऊपर में जब जाएंगे तो ये कष्ट को वो कष्ट ही नहीं माने। कृष्ण के दर्शन में उनकी कथाओं के सुनने में यदि दुख भी है उसको वो सुख मानते हैं, नागनिया पनि सुख, वहां रागात्मिका में भी और रागानुगा में भी ऐसा ही होता है। ये भी कल वहां पर हम लोगों ने बताया, चैतन्य चैतामृत में बात करने की वल्लभाचार्य जी से सबसे पहले अड़ेल ग्राम में उनसे भेंट हुई थी महाप्रभु से। रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी जी महाप्रभु उनके साथ में थे, रूप गोस्वामी के साथ दोनों भैया को कृपा करने के लिए महाप्रभु जी वहां पर पधारे। वल्लभाचार्य जी ने सुना जे कोई महाभागवत आए हैं तो उनको दर्शन करने के लिए पर आए और निमंत्रण करके अपने घर पर ले गए। वहां रघुपत उपाध्याय से उनकी भेंट हुई और वल्लभाचार्य से भेंट हुई, और वहीं का वो श्लोक है कि श्याम एव परम रूपम पुरी मधुपुरी बरा वाय कैसे रोकम एव हे अमात एव। और भी बहुत सी बातें हैं। उस समय में महाप्रभु जी ने इन पर बड़ी कृपा की, इन्होंने अभिमान छोड़ करके, महाप्रभु जी उस समय थे हो सकता है कि 40-45 वर्ष के, वल्लभाचार्य की उम्र थी 85 वर्ष की, इतने वो बूढ़े थे, और द्वैताचार्य के समसामयिक हैं वो, महाप्रभु जी से बहुत बड़े हैं अद्वैताचार्य जी उम्र में इस जगत की दृष्टि से। तो उस समय जब वो घर में गए, वल्लभाचार्य जी ने इनके चरण दबाने की कुछ चेष्टा की, जैसे घर में अतिथि आता है उनकी चरणों की पूजा की, आरती उतारा, पादोदक लिया और वंश के साथ में उसको पान किया, तो महाप्रभु जी ने निष्कपट रूप से उन पर दया की। इसके बाद में महाप्रभु वहां से चले गए। अब बहुत वर्षों के बाद में, 4-5 वर्षों के बाद में वो दक्षिण देश होते हुए भ्रमण करते हुए यहाँ पर पधारे। तब तक श्रीमद् भागवत के ऊपर में उन्होंने सुबोधिनी नामक एक टीका लिखी, सुबोधिनी नामक टीका लिख करके उसका प्रचार कर रहे हैं। बड़े भारी वैदांतिक पंडित थे और मायावादी के को उच्छेद करने वाले में से एक। दक्षिण में विजयनगर में जबकि वो गए, जहाँ का वो राजा था, जैसे कि कौन जाना के साथ में युद्ध हुआ था, पुरुषोत्तम जाना के साथ, कोई उस समय में बहुत बड़ा भारी वो राज्य था, वहां पर एक मायावादी को केवल एक बात पर हरा दिया। उन्होंने कहा सर्वम खलु इदं ब्रह्म मानता है अतः मानते हैं, सर्वम खलु इदं ब्रह्म सभी ब्रह्म है, तो तुम इदम को इस जगत को मिथ्या क्यों कहता है। वो है ना शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर, तो इसको तुम मिथ्या क्यों से मानता है। उत्तर वो लोग ना दे सके, जो कोई उत्तर दें उन्हें खंडन कर दें, बस। उस समय में रामानुजाचार्य के सबसे बड़े भारी पंडित थे वयोवृद्ध, वो सभापति हुए थे, और उस समय शंकराचार्य का बहुत बड़ा भारी दिग्गज विद्वान था जिसको शंकर का अवतार कहते हैं, उनसे और इनसे वो शास्त्रार्थ हुआ था इस विषय। उसको जब परास्त कर दिया तो उनको 108 घड़े सोने के घड़े से इनका अभिषेक किया गया, कनक अभिषेक इनको करते हैं बल्लभाचार्य, सबने उनके पांडित्य को ग्रहण किया। और इस पर भी सुबोधनी जो टीका लिखा इनके अंदर में कुछ अभिमान आ गया, इसलिए जब पुरी में आए तो बतला रहे हैं कि ये महाप्रभु जी से मिलना चाहते थे। महाप्रभु जी से ये मिले, किंतु थोड़ा सा कनक अभिषेक हो जाने से प्रभुता पाई गांव मदना नाय, प्रभुता थोड़ा सा मिलने पर ना, देखो कोई कुछ नहीं पूछता है, मठ का कमांडर कर दो ना तो क्या करेगा वो, मैं यहाँ का मालिक हो गया, आप सब वैष्णव का भी मालिक हो गया, हम जैसा आदेश देंगे वैसा ही होगा, बस प्रभुता आ जाएगी। जिसमें नहीं आती है वो तो बहुत ही पक्के वैष्णव, किंतु साधारण रूप में आ जाता है, थोड़ा सा कुछ हो जाए ना शास्त्र का ज्ञान तभी अभिमान आ सकता है। तो इन्होंने थोड़ा सा ऐसा काम किया, इनको अभिमान हो गया, तो ये महाप्रभु के यहाँ जब गए उसी के लिए ये बतलाने के लिए वंदना कर रहे हैं, श्री चैतन्य चरणम भोजम मकरंदली हो भजे जेसं प्रसाद मात्रेन पामरो अपामरो भवेत। मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों की वंदना करता हूँ, चैतन्य प्रभु जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, चैतन्य महाप्रभु के नहीं, चैतन्य महाप्रभु के चरण के मकरंद का लेहन करने वाले भक्तों की मैं वंदना करता हूँ। जो भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल के मधु का अवलेहन पान करते हैं उनका मैं, उनके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, भजना करता हूँ। जिनके प्रसाद से, किनके भक्तों के प्रसाद से पामर व्यक्ति भी अपामर हो जाता, अपामर माने क्या, पृथ्वी को तरा देने वाला बन जाता है, पवित्र करने वाला बना हो जाता है, ये कह करके उन्होंने उसका प्रसंग लिखना आरंभ किया। यहाँ का संबंध है उसी लिए मैं पाठ कर रहा हूँ। फिर जबकि हम लोगों की भुवनेश्वर की यात्रा समाप्त हो जाएगी और निरंतर धारा प्रवाह से हम लोग जब यहाँ पर बैठेंगे प्रतिदिन शाम को, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग सभी लोग मिल करके राय रामानंद और महाप्रभु जी का प्रसंग यहाँ पर पाठ करें, और यदि समय होगा तो और कुछ बीच बीच में उत्कंठा होती है, ये महाप्रभु जी गंभीरा में किस प्रकार से रहते थे, उनका भाव क्या था, भक्त लोग उसको जानना चाहते हैं, कोई भी भक्त हो, तो इस संबंध में हम लोग बतलाने की कुछ चेष्टा करें। विशेष करके भक्ति राज्य में नौती कुछ है नहीं है, कुछ भी नौती नहीं, आरंभ ही होता है भक्ति से। जैसा भी कोई व्यक्ति हो, जैसे जगाई और मधाई थी, नित्यानंद प्रभु और कौन हरिदास ठाकुर जी, उनको ज्ञान तत्व नहीं सुनाने गए, उनको क्या किया, नई तीन शराब मत पियो, ये कहा शराब मत पियो, झूठ मत मलो, यहां पर स्त्रियां स्नान करने के लिए आती हैं, सज्जन लोग आते हैं उनको तंग मत करो, ये कहा नित्यानंद प्रभु जी ने, उन्होंने क्या कहा, इति से आरंभ किया, क्या इति से आरंभ किया, बोलो कृष्ण कह कृष्ण करो कृष्ण सिक्का कृष्ण कृष्ण बोलो, एकदम वही से आरंभ किया, वो नीचे वाला नहीं आरंभ, क्यों, ये कृष्ण नाम सुनने से ही जाने का, उस सब चीजों का जाने का तरीका है कृष्ण नाम के द्वारा होगा, और इसी के साध्य और साधन जो कुछ तत्व है वो नाम कृपा करके उसे सुनवा देंगे, वैष्णव को भी ला देंगे, सब कुछ कर देंगे। इसलिए इति से आरंभ किया, न इति से नहीं। इसलिए भक्ति एक ऐसी चीज है जिसमें नेति का कोई भी प्रयोजन नहीं, बस प्रयोजन यही नेति में है कि भजन करते समय में ये देखना है कि हमारे अनर्थ ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, नहीं तो हमारे सुनने में करने में हरिनाम कीर्तन में कुछ गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को दूर करना है। सुष्ट रूप से हम कैसे हरिनाम कर सकें और सुष्ट रूप से कैसे हरि कथा करें और हमारा सारा जीवन का एक एक क्षण कैसे भक्ति में लग सके। अनर्थ करने के लिए, अनर्थ को दूर करने के लिए पृथक से कोई चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। कैसे हमारा नाम और हरि कथा निरंतर हो और हमारी भावना कैसे कृष्ण में निरंतर लगे, इस पर हमको देखना है। निरंतर हो जाने से अपने आप उसमें समय नहीं जाएगा, इसलिए हमको ये चीज देखनी है, यह है इति वाचा। और यदि कोई व्यक्ति हरि नाम निरंतर ना करके, हरि कथा ना सुन करके, वैष्णव की सेवा ना करके, उनकी कथा निरंतर ना सुन करके ये यदि चिंता करे हमारा अनर्थ कैसे दूर होगा, हमारा अनर्थ कैसे दूर होगा, हमारा अनर्थ कैसे दूर होगा, तो अनर्थ और उनके घाट पर चढ़ जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा यही तरीका है, ऐसा करो जिससे कि अनर्थ आने की कोई संभावना निवारात्र। सब समय चिंतन जिसका जितना अधिक होगा इति वाचक में, उसके ऊपर में भगवान की कृपा होगी और साथ साथ में हृदय रोग भी दूर जाएगा। और नहीं, 5 मिनट किया हरे कृष्ण भाई हमारा अनर्थ कैसे जाएगा, तब हमको ये सब वैराग्य करना चाहिए, खाना पीना छोड़ दिया और सब कुछ करते धीरे 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 सब यही, सब समय दिन रात यही चिंता, तो क्या होगा, हरि कथा की चिंता नहीं कर रहा, हरि नाम नहीं कर रहा, तुम 3 लाख हरि नाम करना आरंभ कर दो तो तुमको समय ना मिले, जोर जोर से करो, आएगा कहां से। इसलिए ये बेस्ट तरीका है चैतन्य महाप्रभु और हमारे गोस्वामी ने सब जो दिखलाया है। किंतु ये बात भी याद रखनी है, कोटि जन्मे यदि करे समन कीर्तन तब तन पाए कृष्ण पदे, प्रेम नहीं होगा, ये प्रेम कैसे होगा, तन्नाम रूप चरितादि सुकृतनानुक्रमेण रसना मनसी तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नएद अखिलाम इति उपदेश सारे। तदानुरागी और जनानुगामी इसकी जरूरत है, जिसका जैसा संग होगा, नाम करते करते यदि विषयी लोगों के साथ में हम रहेंगे, उनका संग करेंगे तो संसार के विषय और स्वर्ग मिल जाएगा, अन्यास ही ये सब मिल जाएगा। यदि मुक्तिवादियों के साथ में हम नाम करते हैं तो क्या होगा, सहज रूप में मुक्ति मिल सकती है। यदि साधारण भक्तों के साथ में है तो भक्ति साधारण, जैसे भक्त के अनुगत्य में प्रेमी रसी तत्वज्ञ वैष्णव के संग में उनके अनुगत्य में हम करेंगे, जो ब्रजानुरागी ऐसा जो अनुरागी उसके अनुगत्य में हम करेंगे तो हमारा नाम प्रेम फल को देने वाला, एक कृष्ण नाम करे ऐसा हो। और नहीं, हरिनाम कर रहे हैं दूसरे लोगों का संग अब हमारा ठीक नहीं है तो नहीं होगा, चाहे लाख जन्म करो प्रेम नहीं होगा, विशेष करके ब्रज प्रेम नहीं होगा। नाम साध्य और साधन दोनों ठीक है किंतु जनानुरागी की तदानुरागी जनानुगामी नहीं होने से लाख जन्म तक यदि कोई भजन करता रहे ब्रज प्रेम उसको कदापि नहीं होगा, उसमें गोपियों का भाव हो करके तब उसके अनुगत्य में जो भजन करेंगे, क्योंकि एक गोपी भाव बिना वो उन्होंने सनातन गोस्वामी ने उसको नहीं मिल सकता है। इसलिए जदिरूप गोस्वामी के अनुगत्य में उनके अनुरागी जनों, ऐसे अनुरागी जनों के निकट में हम हरि नाम करेंगे तो उनका भाव क्रमशः हमारे हृदय में संचरित होगा और उस प्रेम के द्वारा फिर ब्रज का प्रेम मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। लाख जन्म यदि ज्ञानियों के साथ में करे, तत्व ज्ञानियों के साथ में भी यदि करे तो एक तत्व ज्ञान तक हो करके उसको कुछ साधारण प्रेम मिलेगा, वैकुंठीय प्रेम, ब्रज का प्रेम नहीं मिल सकता। इसलिए संग के ऊपर में निर्भर अधिक है, तदानुरागी होना चाहिए और तब होगा। भावना कहां से आएगी? नाम में जो भावना है वो कहां से आएगी? उन वैष्णवों के हृदय से संक्रमित होकर के तब होगा। नाम कृपालु है, ठीक है, किंतु भक्तों के अनुगामी भगवत कृपा है। भगवान की कृपा निरंकुश नहीं है जो एकदम कृपा कर देंगे, नहीं करेंगे। उन्होंने अपना सबस जो कुछ है वो भक्तों को देखा दे दिया है, इसलिए ऐसे भक्तों के अनुगामी होकर के नाम करेंगे ब्रज के भाव से, तब वो उस प्रेम को, ब्रज के प्रेम को देगा, अन्यथा नाम करने से ही नहीं दे देगा। नाम तो बहुत मायावादी इत्यादि सभी करते हैं, मुक्ति कामी, यहाँ तक कि भोगों के लिए जो नाम करने वाले हैं वो भी करते हैं, इसलिए उनके अधीन होकर के उनके भावों को लेकर के। एक आदमी कर रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहा है। वो कह रहा है ये भाव हरि हर कृपा पान, यहाँ पर हरि का नाम उच्चारण करने से पाप हमारे दूर। कृष्ण जो है अपने गुणों से आकर्षण, राम माने सब रत्र, वो रमण करते हैं, विष्णु है इसलिए रमण करते हैं, इसे ब्रज का प्रेम आ जाएगा। और जो भगवान तो सर्वव्यापी हैं और सब सामर्थ्य हैं वो पीछे चला देंगे भाई, वो सब आएगा यदि अनुग्रह उनका होगा तो किसी ब्रजवासियों का, ब्रजभावापन्न लोगों का संग देंगे, तब फिर भजन करते करते वो हो जाएगा, अन्यथा लाख जन्म तक भी वो भाव नहीं आ सकता है, इसलिए अनुगत्य की जरूरत है। अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्माद्यान्नाभिलम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, यहाँ पर अनुकूल्य का भी वही अर्थ लगाया, निरंतर अनुगत्य में रह करके जो भजन हो, चाहे मुक्त अवस्था में हो, चाहे रागानुगा की स्थिति में हो, चाहे साधारण साधक की अवस्था में, अनुगत्य के बिना वो हो नहीं सकता, इसलिए जैसा अनुगत्य होगा उसका भाव ऐसे ही होगा। महाप्रभु जी ने स्वरूप दामोदर के हाथों में रघुनाथ को क्यों दे दिया? और भी तो लाखों भक्त है, दिया किसी को? उनको दिया है, उनकी भावना उन पर विशेष कृपा है इसलिए उनको दिया। और लोगों का नाम उनका नाम एक होगा नहीं, इसलिए ये पुरी में आए, इनको कुछ अभिमान था। महाप्रभु अंतर से दया कर रहे हैं किंतु बाहर से कुछ उपेक्षा इनको कर रहे हैं। आशिया यही मत विलास प्रभु भक्त संगे लैया हेन काले बल्लभ भट्ट मिली आशिया, आशिया बंदिल भट्ट प्रभु रचरणी प्रभु भागवत बुद्धे कैला आलिंगन, आकर के प्रभु जी के चरणों की वंदना की और इन्होंने उनको आलिंगन किया। क्यों? भागवत बुद्धि, भागवत माने यहाँ पर महाभागवत, भागवत बुद्धि से, अथवा भागवत मध्यम अधिकारी के रूप में भी कर सकते हैं, सभी लोग भागवत हैं। मान्य कर प्रभु तरे निकटे बसिया विनय करिया भट्ट कही देना, मान्य करी प्रभु, उन्होंने वैष्णव के भावना से, भागवत की भावना से उनकी, उनको प्रतिष्ठा दे करके, मान्य करके, आदर पूर्वक विनय करके उनको रखा। भट्टाचार्य ने भी, उन्होंने भी पल्लव भट्ट भी विनय करके कहने लगे, बहुत दिन मनोरथ तुम्हारा देखी बारे, बहुत दिनों से हमारी कामना थी जी आपका दर्शन करेंगे, कब से अढ़ाई ग्राम में प्रयाग में जब से दर्शन किया था आपके दर्शन करने की मेरी अभिलाषा थी, आज जगन्नाथ जी की कृपा से जगन्नाथ पूर्ण कैला देख लो तुम्हारे, जगन्नाथ जी की कृपा से आज हमारा ये भाव पूर्ण हो गया, तुम्हारे दर्शन जे पाए से ही भगवान महाप्रभु जी के लिए कर रहे हैं। महाप्रभु जन ने बोल छे तुम्हारा जो दर्शन पाता है वो भगवान है, बिना भाग्यवान होने से आपका दर्शन नहीं मिलता, तुम्हारे जो स्मरण करे से ही है पवित्र, तुम्हारा जो स्मरण करता है अर्थात महाप्रभु का जो स्मरण करता है वो पवित्र हो जाता है, दर्शन पवित्र हवे इथे की विचित्र, दर्शन से पवित्र हो जाएगा इसकी तो कोई बात ही नहीं, स्मरण करने से भी पवित्र हो जाता है। श्रीमद भागवत का एक श्लोक उन्होंने कहा, क्योंकि श्रीमद भागवत वे पंडित थे, जेसं संस्मरणात् पुंसां शब्दस् शुद्ध्यन्ते वै गृह किम पुनर्दर्शन स्पर्श संपाद शौचासनादि, श्रीमद्भागवत का यह प्रसंग उन्होंने बतलाया कि जिसके स्मरण करने से कौन कह रहा है ये
बल्लभ।
अरे किंतु श्रीमद्भागवत में मूल कहाँ का ये श्लोक है? जब परीक्षित महाराज जी को सांप काटने वाला था और जब ऋषि महर्षि 60,000 या 80,000 या 88,000 ऋषि लोग आ गए, उसमें आए व्यास देव, नारद,
पराशर,
वशिष्ठ इत्यादि, सनक सनंदन, सनत कुमार इत्यादि सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग सब वहां पर उतर। कहते कि आज कौन कहता है जी हमको ये अभिशाप ऋषि ने दिया? भगवान का दर्शन करना सहज है, किंतु भगवान के तदीय ये जो भक्त हैं, जिनका स्मरण करने से ही मनुष्य संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, वही गृहा, गृहा माने घर के साथ, घर के साथ माने क्या, मट्टी का घर या ईंट का, उसके घर में जितना परिवार है, परिवार के सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। जैसे पांडव लोग, ये सब लोग, घर का घर पूरा पूरा गृहस्थ, ऐसे मथुरा के जितने गृहस्थ सब ऋषि महर्षियों के दर्शन से ही पवित्र हो जाते हैं। इसके लिए करें, फिर उनका दर्शन से, स्पर्शन से, उनके चरणों के धौत जल से क्यों नहीं पवित्र होंगे? कायमुतिक न्याय जरूर होगा, इनके स्मरण करने से हो जाता है। ये पांडव गीता में बतलाया है ने? प्यास जी से लेकर के जितने भी वैष्णव हैं, उनका स्मरण करने से सभी आदमी पवित्र बन जाता है, जरूर पवित्र होगा। तो इसी के लिए करें, फिर आपके दर्शन से क्यों नहीं होगा? कलिकारे धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कलिकाल का नाम धर्म है, नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन पर अधिक जोर देना चाहिए। नाम संकीर्तन से पहले श्रवण पर जोर दो, जिसका श्रवण जितना ही अधिक श्रेष्ठ होगा उनका नाम कीर्तन भी श्रेष्ठ होगा, जिसका श्रवण ठीक नहीं हुआ उसका कीर्तन भी ठीक नहीं हुआ। इसलिए पहले श्रवण और कीर्तन पर अधिक जोर दिया। कृष्ण साध्य और साधन दोनों है, उनका नाम भी साध्य और साधन, और सब बाकी जो है सब अंग है। इसलिए नाम कीर्तन कली झुका ये प्रधान धर्म है, इसलिए नाम संकीर्तन के ऊपर में जोर दिया गया। यदि और कुछ करना भी है, अर्चन बंदन और सब जो कुछ करना है, नौदा भक्ति या चौसठ प्रकार की भक्ति, नाम संकीर्तन से जोर से ही होना चाहिए। महाप्रभु जी की यही धारा है, इस धारा से के अनुसार में ही चलना चाहिए। यद्यपि हमारे संप्रदाय में कुछ दिनों के लिए वो रघुनाथ दास गोस्वामी, स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी कुछ दिन के लिए गोवर्धन शिला का कुछ दिन ये भी किए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोविंद और मदन मोहन इत्यादि को प्रकाश किया, फिर इसके बाद में भाव सेवा में चले। इसलिए साधारण लोगों के लिए अर्चन आवश्यक है, जीवन को संयमित करने के लिए सवेरे उठ जाएंगे, उनकी सेवा में लग जाएंगे। किंतु ये द्वापर युग का है, कलिकाल में करते हैं ठीक है, वो स्वभाव के अनुसार में ये बेठीक नहीं है, तो अभी नाम संकीर्तन के ऊपर में और महाप्रभु जी का जो भाव है, रूप सनातन जी का भाव है, उसके अनुसार में हम लोगों को चलने की चेष्टा करनी चाहिए। कोई शालग्राम का शिला लेकर के जा रहा, कोई दूर से देखा भैया ये न जाने क्या ले जा रहा है, छिपा करके ले जा रहा है, बस आपको काट दिया और लेकर के देखा ये शिला, उसको भी फेंक दिया। विशेष विधर्मी आजकल कलयुग में पैदा हुए और सब चीजों का करना बड़ा कठिन है होगा। अभी तो हम लोग कुछ कर रहे हैं विग्रह की सेवा, यहां कुछ दिन में ऐसा भी हो सकता है इतना उत्पात होने लग जाएगा। ये एक अभी ज्योति बाबू है, तब घर घर में ज्योति बाबू पैदा हो जाएंगे, फिर नकश्व पैदा हुए, भजन नहीं करने देंगे ये सब, किंतु हरिनाम में क्या करेंगे, माला भी नहीं रहेंगे तो हरे हरे कृष्ण कर ही लेंगे। इसलिए उसको कोई नहीं रोक सकता, भाव को हमारा कोई रोक नहीं सकता है। और सब चीज में बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए हम लोगों का संप्रदाय में जैसे धारा आ रही है उसी के अनुसार में चलेंगे, अधिकार के अनुसार। तो वो कहते हैं कलिकाल का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन, किंतु कृष्ण शक्ति के बिना उसका प्रवर्तन माने वो प्रचार नहीं कर सकता, अपने तो करेगा किंतु प्रवर्तन करना इसका ये असंभव है। कृष्ण शक्ति होगी उसमें अंदर में, तब उसी के प्रभाव से वो प्रचार कर सकता है। कहां प्रवर्तिला तुम्हें, और आपने विश्व में सर्वत्र कृष्ण नाम का प्रचार किया, जारे देखा सब लोगों को एकदम, यहां दक्षिण में गए सब लोगों को वैष्णव कर दिया, पश्चात देश में गए वहां मथुरा इत्यादि में गए, जिसको देखा वहां पर यहां तक कि मुसलमानों को भी जवनों को भी एकदम कृष्ण नाम कर दिया उसमें। तो इसका यह प्रमाण है कि तुम्हारे अंदर में कृष्ण की शक्ति है। भगवान तो उन्होंने उस समय नहीं माना, पीछे माना, किंतु करें आप में ऐसी शक्ति है, कृष्ण शक्ति धरो तुम्हें इथे नहीं आ जगते करीला तुम्हें कृष्ण नाम प्रकाशे, जे तो मा देखे से ही कृष्ण प्रेम भाषे, तुमको देखने से ही कृष्ण प्रेम में एकदम तैरना डूबने उतराने लगता है। प्रेम प्रकाश नहीं कृष्ण शक्ति बिना, प्रेम का प्रकाश कभी भी कृष्ण शक्ति के बिना संभव नहीं है। इसलिए आपको देख करके मनुष्य क्या, जितने पशु पक्षी हमने सुना है कि आप जा रहे थे जब वृंदावन झाड़ी खंड के रास्ते से, वहां पर जितने हिंस जंतु भी बाघ भालू भी कृष्ण नाम करने लगे, हाथी भी करने लगे। कुशल देख कृष्ण एक प्रेमदाता शास्त्र प्रमाण, शास्त्र के प्रमाण से एकमात्र कृष्ण ही प्रेम देते हैं। मालूम होता है कि आप वही कृष्ण हैं, तो ये प्रेम दान आपके द्वारा नहीं होता, एकमात्र कृष्ण ही ये प्रेम दे सकते हैं। संत बहु अवतारा, संत अवतारा बहुव पुष्करणाभस्य प्रसादतो अभद्र कृष्णादन्न को वा लताश्वपि प्रेम दो भवति। बहुत से अवतार जगत में हैं और होंगे, किंतु और वो सभी भद्र हैं, भद्र माने कल्याणकारी हैं, किंतु एक कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन सा अवतार है जो लताओं को भी वृक्षों को भी पशुओं को भी पक्षियों को भी कृष्ण प्रेम दिया, दूसरा कोई नहीं। इसलिए आज जब आप कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, कृष्ण कृष्ण करके ये सभी नाच रहे हैं, तो जरूर आप कृष्ण ही हैं, अनुमान हमने किया। महाप्रभु कहे सुनो भक्त महामति, आप महामति हैं, मायावादी सन्यासी आमी ना जानी कृष्ण भक्त, मैं मायावादी सन्यासी हूं, मैंने मायावाद वो कौन केशव भारती, और उसे मैंने सन्यास लिया एक दंड, मेरा नाम भी उन्हीं लोगों के नाम अनुसार में कृष्ण चैतन्य हुआ। उन लोगों ने तो चैतन्य ही दिया था, किंतु वो भक्त थे इसलिए कृष्ण चैतन्य लगा दिया, उनमें कृष्ण चैतन्य की कोई भी उपाधि नहीं है, चैतन्य की उपाधि है वाराणसी इत्यादि, ये कृष्ण चैतन्य हुए। ना जानी कृष्ण भक्ति, मैं कृष्ण भक्ति नहीं जानता। अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर। अब अपने भक्तों का चरित्र वर्णन करना है, किस लिए वर्णन कर रहे हैं, इनके अंदर में जो अभिमान है भक्ति का कि मैं भक्ति हूं, ये सबको दूर करने के लिए जो जो ये कहेंगे उनका सबका खंडन करेंगे, और खंडन करके ये भक्तों का चरित्र सुना करके उनका अभिमान दूर करके तब उनको भक्ति लाइन में ले आएंगे। इसलिए प्रभु ऊपर से दिखलाते हैं वैराग्य, उनके प्रति कुछ कठोर शासन भी दिखलाते हैं, किंतु भीतर से उनका मन द्रवित रहता है, वो ऐसे लोगों को भी भक्ति में बुलाना चाहते हैं। अद्वैताचार्य उनको कहा जैसे हमारे जैसा कोई विद्वान नहीं है, ने? मैं कितने मायावादियों को परास्त करके शास्त्रार्थ में आया। अद्वैताचार्य ने अद्वैताचार्य के पास में आए तो अद्वैताचार्य से उन्होंने कहा, ये तो महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं उनका गुण अद्वैताचार्य, किंतु पीछे से इसमें व्यक्त हुआ है। अद्वैताचार्य के पास में गए, महाप्रभु जी की सभा में इनको किसी ने नहीं पूछा कि हंस मध्य जथा, हंस जहां पर राज हंस हो और उसमें वक्त जैसा है, कैसे एक समय कुछ हंस जा रहे थे समुद्र के किनारे उड़ते हुए, एक कौआ आया, कहे कहां जा रहे हैं आप, कुधा जा छो, तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा विचरण करने के लिए, इधर से पार होकर के चले जाएंगे उस पार, तो हम भी चलेंगे। कहे तुम मत जाओ, अरे तुम लोग एक चाल जानता है और हम कितना चाल जानते हैं, हम कभी ऐसे उड़ते हैं, कभी उल्टा उड़ते हैं, कभी उसमें हम उलट जाते हैं, हम बहुत तरह की चाल जानते हैं, तुम लोग एक ताल से चलता है, तो ठीक है चलो, नहीं मानता है। तो थोड़ी देर जाने के बाद में अभी
चलने पे
अभी 400 गज ही गया होगा तो वो हाँफने लगा, तो हाँफ करके कभी ऊपर आता है तो धीरे धीरे हाँफ करके नीचे चला जाता है, और कभी कभी उलट जाता है, कहे ओ ये सब आप इतनी चाल जानते हैं, किंतु चिढ़ाने लगे। थोड़ी देर के बाद में वो डूबने लगा, पानी में गिरने लगा, पानी में जब गिर करके डूबने का गिरने लगा तो उन्होंने कहा अच्छा ये कौन सी चाल है, ये डूबने की भी चाल है आपकी, अब उसमें फिर अब निकल करके उड़िए, तो अब उड़ा नहीं गया, जब डूबने लगा तो उसको अपने पीठ पर ले लिया, पीठ पर लेकर के उनको पीठ पर रख करके और फिर चले गए। और हंस में वक्त जैसा हंस राज हंस है, और ये एक किनारे में बैठा हुआ काला कौआ या बौक बगुला, देखने में सफेद होने पर भी बक में और राजहंस में बहुत अंतर है। तो इन्होंने जाकर के द्वैताचार्य से पूछा कि हमने श्रीमद् भागवत लिखा है, कोई सुनता नहीं है, मैंने बहुत चेष्टा किया, तो आप थोड़ा सा सुने, मैंने कृष्णम का कितना अर्थ किया है, बहुत अर्थ किया, बहुत तरह का। और द्वैताचार्य जी ने कहा हम तो बस एक ही अर्थ जानते हैं, क्या अर्थ जानते हैं, एकमात्र ब्रजेंद्र नंदनी कृष्ण है, इसके अतिरिक्त तो मैं कोई अर्थ नहीं जानता, ना कोई हमको सुनने की जरूरत है, ये महाप्रभु नहीं कहा, यह अद्वैताचार्य ने कहा। और जो जो वो अर्थ करे महाप्रभु जी उसका अद्वैताचार्य खंडन करे, उनकी अकल चकरा गई। मैंने कहा जी इतने धुरंधर हम लोगों को, जितने भी शास्त्रज्ञ थे बड़े बड़े मायावादी, उनको तो परास्त कर दिया, और ये हमारी बात को, कोई भी बात होती है ये खंडन कर देता है, ये तो अद्भुत बूढ़ा आदमी है। बस एकदम उनके चरणों में श्रद्धा, ऐसे ये धुरंधर। रामानंद के पास में यदि जाते तो रामानंद कैसे गंभीर विद्वान है, रामानंद के पास में एक सुनाने के लिए कवि आया ना, जद्वा तद्वा कवि, उसने कहा एक जंगम जगन्नाथ और एक सचल और अचल, दो जगह, और उनका कुछ प्रशंसा लिखा। इन्होंने कहा स्वरूप दामोदर ने क्या कहा, अरे जद्वा तद्वा कवि तुमने ये क्या लिख करके लिया, महाअपराधी, उनको सचल और अचल कहता है, जब वो एकदम वो उसके निराश हो गया, जब हम इतना सुंदर लेकर के लिए आए थे उन्होंने काट दिया, तब उसके मन को फिर प्रसन्न करने के लिए कहा जैसे सरस्वती देवी जी हैं तुम्हारे इस वाक्य को इस रूप में तुम समझो, तब फिर उसका दूसरा अर्थ बताया। रामानंद कहां विशाखा जी क्या होता, उनके सामने जगत का कौन पंडित लगेगा, ये बल्लभाचार्य फल्लभाचार्य क्या लगेंगे उनके सामने, और द्वैताचार्य के सामने उनकी जितनी अकल थी वो सब खत्म हो गई। और सब स्वरूप दामोदर जी राय रामानंद जब ये लोग बैठते थे उसमें बक के समान ये बैठते थे, तो उनको उद्धार करने के लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं देखो अब द्वैताचार्य की संग में रहने से हमारी बुद्धि निर्मल हुई है, मैं पक्का मायावादी था, तार संगे हमार मन हो निर्मल, सर्वशास्त्रे कृष्ण भक्ते नहीं जार सम, इनके समान और कृष्ण भक्ति में कोई नहीं है, अतः अद्वैत आचार्य तारना, इनके समान और कोई है ही नहीं है भक्ति शास्त्र में और सर्वशास्त्र में ये पंडित है। इसलिए अद्वैताचार्य हैं। जहां कृपाते मिलेक्षर है कृष्ण भक्ति, मिलेक्षों को भी कृष्ण भक्ति होती है, पांडित्य के द्वारा नहीं होगा। हजार कोई तत्व सुनाए वो होगा ना, उसके हृदय में जो भक्ति है वो भक्ति उस किसी के हृदय में संचरित हो उसके द्वारा वो भक्ति होगी। भक्त्या भगवतम ग्राह नहीं, भक्ति संजायते भक्ति के द्वारा भक्ति संचरित हो। के कहते पारे तार वैष्णवता शक्ति, क्यों ये महाविष्णु है। महाविष्णु है कौन? महाविष्णु कर्णाब्दिशाही, कर्णाब्दिशाही का मूल क्या है? महाशंकरसन। महाशंकरसन कौन बहन बैठे हैं? मूल शंकरसन। मूल शंकरसन कौन है? द्वारका के बलदेव और मथुरा के बलदेव। और इनका मूल कौन है?
ब्रज के बलदेव,
बलदेव जी। इसलिए इनको भी बलदेव जी समझो, बलदेव जी से अभिन्न है ये। बलदेव जी ही कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए कर्णाब्दिशाही विष्णु या ये महाविष्णु के रूप में, यहां तक कि शेष को वहीं से समझो, बलदेव प्रभु ही समझो, अभिन्न तत्व हैं, उनके प्रकाश हैं, कोई प्रकाश के प्रकाश हैं, इसलिए उनको कोई कला कहते हैं, किसी को भी कला कहते हैं, किंतु हैं एक सब नीचे से ऊपर तत्व। ये कृष्ण भक्ति का प्रकाश करने वाले हैं, इसलिए अद्वैताचार्य जैसे हैं। अद्वैताचार्य यदि नहीं होते तो महाप्रभु कब आते कोई ठीक नहीं था, इनके वजह से ही उस समय में आए। वो भी तुलसी पत्र देकर के उनको बुलाया था। सर्वोत्तम भजन यही सर्वशक्ति, नित्यानंद अवधूत। देखो ये अवधूत जो बैठे हैं ना, नित्यानंद प्रभु दिखला करके कर संक्षेप में ये बतला रहे, साक्षात ईश्वर, घूम फिर करके ईश्वर नहीं है। ये अद्वैताचार्य उन्हीं के कौन है? अंश के अंश है, नित्यानंद गुरु के अंश के अंश के कला है। भावन्मादे मत कृष्ण प्रेम सागर, ये भाव में उन्मत्त उन्माद कैसा, सची देवी के नहीं मालिनी देवी के गोदी में बैठ गए, उम्र हो गई होगी 30-35 की नित्यानंद प्रभु की, और जब मालिनी के घर में आए तो उनकी गोदी में बैठ गए, नंगा कपड़ा उड़ा दिया सिर से, सिर पर बांध रखा था वो भी उड़ा दिया, और उनका स्तनपान करने लगे, और हाथ से ग्रास से उठा करके नहीं खाते थे, छोड़ा शिशु को जैसे उठा करके खिलाते हैं वैसा वो खिलाती थी तब खाते थे। और जहां सची जी के घर में गए, कन्हैया कहां, कन्हैया कहां, और वो कपड़ा बांध लिया सिर पर और उनके घर में घुस, अरे अभी तक सो रहा है, वही बाल्य भाव। सची देवी और महाप्रभु जी की विष्णु प्रिया, डर के मारे भागी लज्जा से, महाप्रभु जी ने अपना चादर उनको जोर से लपका दिया, अरे शिवाद ये क्या कर रहे हो, वो तो जानते हैं कि उनको होश नहीं भाव उन्माद में। इसी तरह से गोचारण के भाव में भी उन्माद रहते थे, सबसे उनका यही भाव, मैं बलदेव हूं और ये कन्हैया है। भाव उन्माद मत कृष्ण प्रेमे सागर, कृष्ण के प्रेम के सागर हैं। कैसे सागर हैं? आसन बसन भूषण पादुका चमर छत्र ये सब के रूप में ही है। दास सख बात्सल्य उनकी मधुर रस तक उनकी कृष्ण की सेवा करते हैं, और नंग मंजरी के रूप में उनको जब दास रूप में और सखा के रूप में बलदेव के रूप में कर रहे हैं, और उसमें बात्सल्य भी रख लो क्योंकि बड़ा भैया पिता के समान होता है, तो उसमें सभी आ गया, किंतु तभी क्षोभ रहा है तो इसलिए अनंग मंजरी के रूप में श्रीमती राधिका की छोटी बहन होकर के जन्म लिया। वही वृषभानी, बल्कि राधा जी उनके गर्भ से नहीं निकली, कभी निकलती हैं किसी कल्प में और कभी वो
जमुना
से वन से कमल बुन से निकलती हैं, किंतु ये वृषभानु महाराज जी की पत्नी कृपा सुंदरी के गर्भ से ये पैदा हुई। एक प्रकार से वो सेवा करते हैं। ये जाननामत देवी वही अनंग मंजरी है, तो इसलिए बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु भी जाननामत देवी के रूप में उनकी शक्ति के रूप में है, इसलिए कभी कभी अनंग मंजरी को अपने बाएं तरफ में बैठा करके राधा जी को दाहिने तरफ में ले लेते हैं गोपीनाथ जी के विग्रह में, जाह्नवी देवी को बाएं तरफ, अनंग मंजरी को बाएं तरफ रखा। किसको, किस लिए? एक भाव आया उनको प्रसन्न करने के लिए। किसको प्रसन्न करने के लिए? राधा जी को प्रसन्न करने के लिए। तुम्हारी छोटी बहन को मैं इतना प्यार करता हूं तो तुमको कितना प्यार करता हूं, इस चीज को दिखलाने के लिए अनंग मंजरी को बैठा। किसी को एक लड़का है, उस आदमी को उतना प्यार नहीं किया, उसके लड़के को गोदी में बैठा करके थोड़ा सा मिठाई देकर के चुंबन करके स्नेह करने लगे ना, वो आदमी अभिभूत हो जाएगा, वो अपने आप वशीभूत हो जाएगा। ऐसी ही रीति है। इसी तरह से नित्यानंद प्रभु जी सब प्रकार से सेवा करते हैं। इतना नहीं बतलाया होगा वल्लभाचार्य जी को, केवल ऐसे ही बतलाया, प्रेम के ये सागर हैं। सर्व दर्शन वेत्ता भट्टाचार्य सौ सार्वभौम, ये जो देख रहे हो ना दाढ़ी वाले जो राज पंडित हैं, ये कौन है? सर्व दर्शन वेत्ता, उनको जानने वाले सर्व दर्शनों को। भट्टाचार्य सार्वभौम, सार्वभौम माने विद्वानों के एकदम मुकुट हैं। सर्व दर्शने जगत गुरु भागवतोत्तम, और भागवत उत्तम, केवल भागवत नहीं, भागवत में उत्तम है। क्यों भागवत में उत्तम है? क्योंकि भक्ति पदेश दाय भाग, ये भी उनको सुनने में बुरा लगता है, वो भक्ति पदेश है। महाप्रभु जी ने समझाया ये भी अलग, तुम्हारा ये बहादुरी है, तुम्हारी ये प्रशंसा है, जो तुम मुक्ति पद नहीं देखना चाहते, किंतु यहां पर ये समझो ये भक्ति के पद में मुक्ति है, इसलिए इसको ग्रहण कर लेना चाहिए। भागवत में कभी भी कोई सिद्धांत विरुद्ध नहीं हो सकता है कोई चीज, उसका सामंजस्य कर लेना चाहिए। तुम देख रहा है मोरे भक्ति जोग पार, तार प्रसादे जालू कृष्ण भक्ति जोग सार, इन्हीं की कृपा से मंच को भक्ति राज्य में मैं प्रवेश किया मैंने, और इन्हीं के कृपा से मैं भक्ति योग का जो सार है वो मैं समझा। क्यों? इनकी कृपा से ये महा, इन्होंने कहा था ये जाओ दक्षिण में, और वहां पर गोदावरी के तट पर राय रामानंद मिलेंगे, उनको तुम विषय मत समझना, वो परम भक्त हैं, इसलिए उन पर कृपा करना, उनसे बातचीत जरूर करना। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं इन्हीं के वजह से वो हमारे पास में आए, और राय रामानंद का संग हमको मिला, और उनके संग से हमको ये भक्ति योग, कृष्ण भक्ति योग, और उस योग का सार, भक्ति योग का सार क्या है? ब्रज प्रेम, ब्रज परम का सार दास्य प्रेम, दास प्रेम का सार सख्य प्रेम, सख्य का भी सार वात्सल्य, उसका भी सार गोपी भाव, गोपी का सार भाव नहीं राधिका जी का भाव, ये सब का सार है। ये सब मैंने समझाई नहीं की कृपा से, रामानंद राय कृष्ण रसे रनिदान, उन्हीं के संग से राय रामानंद काम, बिना भक्तों की कृपा से सदगुरु और रसिक वैष्णव नहीं मिलते, अब बिना उनके संग से भक्ति नहीं मिलती, इसलिए कहा गया है भक्ति कहां से होती है? भक्तों के संग से ही होता है। क्या भक्ति स्तु बिना भगवत भक्तों के संग से भक्ति नहीं हो सकती है? यदि कृष्ण भी कृपा करेंगे तो भक्तों का संग देकर के ही हमको ले जाएंगे, वही एकमात्र पंथा, दूसरा कोई पथ नहीं है। इसलिए रामानंद राय कृष्ण रसे रनिदान तिहो जनई लो, कृष्ण स्वयं भगवान, उन्होंने कहा मुझको जे कृष्ण स्वयं भगवान। चैतन्य महाप्रभु के पहले श्रीमद् भागवत में रहने पर भी कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कोई इस पर अधिक नहीं ध्यान, उसका अर्थ क्या करते हैं? एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं है ना, एते च अंश कला, ये कृष्ण तक जितना बतलाया गया है, एते च अंश कला किसके? पुंसः माने नारायण, नारायण के ये सब अंश और कला है। रामानुज संप्रदाय में, मत्स्य संप्रदाय में बड़े बड़े विद्वान राघव इत्यादि हो गए हैं, हनुमत भाष्य इत्यादि है, सब में ऐसा ही दिखा, वल्लभाचार्य जी ने भी ऐसा दिखा, केवल चैतन्य महाप्रभु जी ने इसका कहा जैसे यदि ऐसा करते हो तो ये भूल है। चैतन्य चरितामृत में उसको कृष्ण दास कविराज गोस्वामी ने महाप्रभु का विचार दिया, उसमें विचार दिया दो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये मूल वाक्य है, एक को कहते हैं उपादान और एक को
विधेय,
अनुवाद
एक को विधेय,
अनुवाद और एक विधेय, पहले कौन होगा
अनुवाद,
पहले अनुवाद करके विधेय होगा, पहले विधेय नहीं होता। एतच्चांश कलापुंस, ये अनुवाद है और विधेय क्या है, कृष्णस्तु भगवान, यदि तुम और उसका अर्थ कर देगा ऐसा है तो साफ चौटक चौपट अर्थ होगा, इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यही ठीक है। उन्होंने युक्ति से साथ में हमारे जीव गोस्वामी ने उसमें कृष्ण संदर्भ में और हमारे सब आचार्यों ने इसको अच्छी तरह से बतलाया है। तो इन्होंने मुझको बतलाया ताते कृष्ण प्रेम भक्ति पुरुषार्थ शिरोमणि, प्रेम भक्ति ही पुरुषार्थ शिरोमणि है, राग मार्गे प्रेम भक्ति सर्वाधिक ज्ञानी, प्रेम भक्ति तो ये ठीक है किंतु फिर आप उसको फिर से बतला रहे हैं, ये पुरुषार्थ शिरोमणि होने पर कब होगी, जब राग मार्ग में प्रेम भक्ति होगी वो पुरुषार्थ शिरोमणि है, वैधि भक्ति के द्वारा जो प्रेमा भक्ति होती है, जैसे अजामिल को मिला पहले नामाभास के द्वारा उसका अनर्थ दूर हो गया उन भक्तों की कृपा से, पीछे सहद्वार में चला गया और वहां जाकर के नाम का साधन करने लगा, पहले कहता था नारायण नारायण, अब ओम नमो नारायणाय वो कहने लगा, और उसके साथ में जो चारों लोगों ने जो तत्व बदला था उसके साथ में जोड़ा, धीरे 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 उसका अनर्थ तो नाश हो गया था, अब धीरे धीरे भक्ति प्रकाश, बिना प्रेम के बैकुंठ में नहीं जाना, कोई नहीं जा सकता, किंतु वह भक्ति जो प्रेम था वो वैधि भक्ति का हो गया। समय दास सख बासल आर्ष जय सिंगार, दास सख गुरु कांता आशय जहार, इन्होंने हमको बतलाया चार प्रकार के दास सख बासल और जो सिंगार, दास से दास, सख से सखा, बासल्य से गुरु, गुरु माने माता पिता, और कांता सिंगार से जो कांता, आशय जहार, कृष्ण के ये प्रेम के आशय हैं, विषय हैं कृष्ण, ऐश्वर्य ज्ञान युक्त केवल भाव आर, ऐश्वर्य ज्ञान ना पाई ब्रजेंद्र कुमार, ऐश्वर्य ज्ञान युक्त जो कृष्ण भगवान हैं, सड़ैश्वर्यशाली हैं, इस भाव के द्वारा, केवल इस भाव के द्वारा ब्रजेंद्र नंदन जो हैं उनको कोई नहीं पा सकता है, वो कहां जाएगा, कृष्ण का भजन करने से, यदि कोई कृष्ण का भजन कर रहा है किंतु ऐश्वर्य ज्ञान से, वो गोलोक में जाएगा। गोलोक में तीन खंड है भीतर में, एक खंड है उसके बाद में गोलोक के बाद में, गोलोक प्राचीर मान समझ लो, उसमें नीचे है द्वारका, उसके ऊपर है मथुरा, उसके ऊपर है
वृंदावन,
वृंदावन में भी